सुलोचन तुम कहाँ आओ? ये तुम्हारा साउंड वाला कैसे काम करना है? डेली यही करना पड़ता है। गेट नया लाओ ना।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
गीता का कसम खाकर बोल रहा हूं,
अगली जी बड़ा क्लियरली बात कर रहे सबसे वक्ता, सबसे वक्ता के दो और होते हैं। एक और जब पूछा कुछ वो होने लगे तो अपने बात से मुकर ना जाए, ये भी कहलाता है सबसे वक्ता। और दूसरा वह बात जो कभी झूठ हो ही नहीं सकता है, जो व्यक्ति बात करे वो तीनों काल में सत्य होगा। भगवान का एक नाम है सत्य व्रत, सत्यम व्रतम सत्य, सत्यम व्रतम परम सत्यम सत्यात्मी नित्य सत्य, भगवान सत्य व्रत है, सत्य व्रत में निश्चित रहते हैं। उनकी जो वाणी होती है वो तीनों काल में सत्य होती है। वो सत्य व्रत या साधु लोग हैं, साधुओं की वाणी तीनों काल में सत्य होती है। प्रभुपाद जी जो कह दिए हैं वो हमेशा के लिए सत्य है। आजकल बहुत लोग स्पेकुलेशन करते हैं, प्रभुपाद जी जो बात कहे थे वो उस समय का बात था, अभी उस समय बदल गया है, ऐसी बात नहीं है। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं और उनके लेखन से जो कुछ भी आया हुआ है वो सत्य बात है। पत्रकार सत्य है, आकाश सत्य है। प्रभुपाद जी अगर कोई प्रवचन सुने तो समझ सकता है प्रभुपाद जी कितना रियल बात कह रहे हैं, बिल्कुल रियल बात कह रहे हैं। जो आज हम लोग यदि एक सेकेंड के लिए झूठापन का पर्दा हटा दें तो प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं और कुछ नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं है। तो ये प्रश्न कह रहे हैं कि वो सत्य व्रता सत्य वक्ता कौन है। छठा प्रश्न था दृढ़, वो दृढ़ प्रति व्यक्ति कौन है। जो करता है वो करता है कि मिल से करता है, वो करता है, वह है दृढ़ प्रतिज्ञ। सातवां प्रश्न था वह कौन सा व्यक्ति है जो सब प्रकार के सब आचारों से युक्त है। मनुष्य जीवन में सदाचार पहला सोपान है। जिस व्यक्ति सदाचार नहीं है वो मनुष्य कल्याण के योगी नहीं। सदाचार का मतलब होता है सत आचार, सत मतलब भगवान और आचार मतलब आचरण। भगवान के निहित आचरण करने वाला व्यक्ति सदाचारी कहलाता है, यानी भगवत भक्त है वो सदाचारी। जिसमें धर्म की प्रधानता हो तो यह सदाचार से युक्त व्यक्ति कौन है। आत्मा तो समस्त प्राणियों का हित साधक है। आजकल देखा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग सोसाइटी चलाते हैं, वे कहते हैं कि हम विभिन्न प्रकार का सोसाइटी, कुछ लोग कुत्तों के भरण पोषण का सोसाइटी चलाते हैं। आप किसी के कुत्ते को आप मार डालिए तो बड़ा केस कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पेड़ पौधों के रक्षा के लिए सोसाइटी चलाते हैं, पेड़ पौधा आप काट डालिए तो देखिए क्या चलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग सोसाइटी चलाते हैं अलग अलग वस्तुओं के रक्षा करने के लिए। और वे कहते हैं कि हम प्राणियों का हित कर रहे हैं, प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं। गाय का मांस खा रहे हैं लेकिन कहते हैं हम प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं। कुत्ते का रक्षा कर रहे हैं और गाय का मांस खा रहे हैं, ये कैसा हितों का कल्याण हुआ, ये कैसा प्राणियों का हित हुआ, ये प्राणियों का हित हुआ। कि विद्वान कौन है, विद्वान का परिभाषा क्या है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि विद्वान कौन है, कहते विद्या ब्रह्मी रविहस्तिनी सुनिश्चय पांच पंडिता सुंदर। विद्वान हुआ है जो समभाव से सबको देखता है, सब में भगवान का जो दर्शन करता है और जो समझता है कि सबका संबंध भगवान से है, जो बात समझता है वो विद्वान है। जो विज्ञान को जानता है वो विद्वान है, ज्ञान भी विज्ञान है, सब जिसका संबंध भगवान से जो जानता है वो विद्वान है। दसवां प्रभु था सबसे सामर्थ्यशाली कौन व्यक्ति है। सामर्थ्यशाली का मतलब यही नहीं कि धन दौलत वाला, आजकल लोग समझते हैं सामर्थ्यशाली के पास 1500 रुपया है बैंक में वो सामर्थ्यशाली है, सामर्थ्यशाली का मतलब जो सब कुछ याद रख अपने को भी देने में सक्षम वह है सामर्थ्यशाली। एक ग्राहक प्रश्न था कि संसार में आज के दिन सबसे सुंदर कौन व्यक्ति है। सुंदरता विभिन्न प्रकार से प्राप्त होती है, एक शारीरिक सुंदरता है, एक आचरण की सुंदरता है, ज्ञान की सुंदरता है। यहां पर वाल्मीकि जी वास्तव में सारे सौंदर्य के संबंध में कह रहे हैं तो सुंदर कौन है। बड़ा प्रश्न था मन को अपने बस में रखने वाला कौन व्यक्ति है। पूरे शरीर में जो मन है बड़ा चंचल है, अर्जुन भी कहते हैं चंचलान मना प्रवासी बलोजनम, एक मन बड़ा बिना नोटिस दिए हुए चला जाता है। मन हम लोग यहाँ कथा के लिए बैठे हुए हैं और पता नहीं एक सेकेंड में कहाँ चला जाए, अरे बोले तो क्या हुआ क्या करना, मैं पूछूं बताओ आपका मन बड़ा है चला गया। मन बड़ा तो मन को बस में रखने वाला, जो मन को बस में रख सकता है वो जितेंद्रिय कहलाता है। जो मन को बस में रख सकता है वो अपने इंद्रियों को आसानी से बस में रख सकता है, क्योंकि जो इंद्रियां वो मन के बस में होती है। भगवान गीता में कहते हैं मानव जीव लोग जीव भूत सनातन मानव सारी इंद्रिया प्रकृति यात्री प्रकृति। संसार में जीव संभव कर रहा है, पांच ज्ञान इंद्रिया और उसका जो सेना नायक है वो मन है। तो सेना नायक के साथ यदि सेना नायक को अपने पक्ष में कर ले तो सब सेना अपने आप पक्ष में हो जाएगी। तो मन पक्ष में हो जाए तो सब इंद्रिया अपने आप पक्ष में हो जाएगी। तो मन को पक्ष में रखने वाला कौन व्यक्ति है। त्रेवन प्रश्न है क्रोध को जीतने वाला कौन व्यक्ति है। क्रोध पर जो विजय प्राप्त कर लिया, जो क्रोध के बस में नहीं होता है बल्कि क्रोध उसके बस में होता है। खुद क्रोध पर विजय प्राप्त करने का यह हुआ, यह नहीं तो क्रोध न होना। आप सब लोग कृपा करके अपने बच्चों को सुला लीजिए, समझते हैं ना, मोबाइल पर आप लोग साइलेंट कर लीजिए। तो क्रोध को जीतने का मतलब हुआ कि क्रोध के बस में न होना बल्कि क्रोध को अपने बस में कर लेना। क्रोध न होना ये हो ही नहीं सकता है, और यदि क्रोध नहीं हुआ होगा तो महाभारत युद्ध में इतना लड़ाई में लोगों को मारे नहीं होते, हनुमान जी को क्रोध नहीं हुआ होता तो लंका को जलाए नहीं होते। क्रोध रखना चाहिए लेकिन नहीं मिलती है। काम क्रोध उपजाए, जब काम होता है और वस्तु की प्राप्ति हो, इच्छा कुछ वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होती है और जब वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो क्रोध आता है। काम जो वैष्णव होते हैं उनके पास कोई काम है ही नहीं। काम का अर्थ है निगेटिव दृष्टि, निगेटिव दृष्टि तार नाम काम, और कृष्ण इंद्रिय स्मृति वांछा धरे प्रेम नाम। भक्तों की इंद्रिय दृष्टि में नहीं लगे रहते हैं इसलिए उनके पास कोई कामना नहीं है, और जिसके पास कोई कामना नहीं है कहते हैं क्रोध किसके पास नहीं है, क्रोध को जीतने वाला कौन है। चौथा प्रश्न था, वह कांति मान व्यक्ति जिसके शरीर से कांति निकलती हो, उसके आचरण से, उसके वचन से, उसके शरीर से, वह व्यक्ति कौन है। पंद्रहवां प्रश्न था कि वह कौन व्यक्ति है जो कभी भी किसी का निंदा नहीं करता है। निंदा करना बहुत खराब है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि किए तो देखे कि एक सुअर जो थी वो मल खा रही थी, तो ब्रह्मा जी हंस पड़े। तो नारद जी का अधिकारी क्यों, क्या बात है, आप क्यों हंस रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा सृष्टि अब सफल हो गया। इसका कैसे, कहा कि जो व्यक्ति निंदा करता है, निंदा का रचना कर करके और स्वर का रचना कर करके, स्वर क्या करता है, मल खा करके उस स्थान को साफ कर देता है, ये करता है ना। जो निंदा करता है वह निंदा कर करके जिसके अंदर अवगुण है उसके अवगुण को अपने पास ले लेता है। कर्म का फल यही है, आप यदि किसी का निंदा करोगे तो उसका छुटकारा हो जाएगा उस अवगुण से, और वो अवगुण कहां रहेगा, अपने पास रहेगा। तो ब्रह्मा जी बड़े कूट से निंदकों को और सुअर का, इन दो का रचना कर सके। दोनों का काम है सफाई करना। सुअर सफाई करती है मल खा करके, और निंदक लोग सफाई करते हैं सज्जन पुरुषों का निंदा करके। दुर्जनों का निंदा नहीं करेंगे, दुर्जनों के साथ नहीं मिल जाएंगे, लेकिन सज्जन का ही नहीं, दुर्जनों का निंदा होता भी नहीं है, क्या निंदा करेगा उसका, निंदनीय ही है। तो सज्जन लोगों का निंदा होता है, तो कौन वह व्यक्ति है जो किसी का कभी निंदा ना करे। सोलहवां प्रश्न था, वह कौन व्यक्ति है जिस सज्जन में जिसे कुपित होने पर देवता लोग कड़कड़ाने लगते हैं, कांपने लगते हैं। इस प्रकार से जब नारद जी यह प्रश्न किए, तो नारद जी से जब वाल्मीकि जी प्रश्न किए तो वाल्मीकि जी से नारद जी ने कहा कि आप थोड़ा कठिन प्रश्न कर दिए, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं और सोच करके आपको मैं बता दूंगा। तब नारद जी कहते हैं, बहु दुर्लभाश्चैव एतया कृता गुणा मुने वक्ष्यान् बुधया तैरुक्त श्रुतान्। कहते हे वाल्मीकि जी, बड़ा ही सुंदर आपने प्रश्न किया। यह जो प्रश्न है वह वैसे सुदुर्लभ गुणों का प्रधान करेगा जिसका वर्णन सुनने से मनुष्यों का कल्याण होगा, और जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको आप ध्यान लगा करके सुनिएगा। तो नारद जी हम सब लोग कह रहे हैं कि ध्यान लगाकर सुनिएगा, कोई दूर आ गया चल जाइए, हम लोग अब लड़ पड़ने वाला है, चल जाइए, ध्यान लगाकर सुनिएगा। नारद जी अब उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं उस व्यक्ति का जिनके गुणों के विषय में एक व्यक्ति, वो व्यक्ति एक हो जिसमें सब गुण होना चाहिए, एक व्यक्ति। बनारस से बड़ा विचार कर करके अपना कंप्यूटर चालू किए और फिर पढ़ने लगा है तो व्यक्ति कौन है। यहां पर कंप्यूटर में एक चीज डालोगे तो उसका 10-15 आएगा, यहां पर 15 चीज डालो तो एक चीज आने वाला है। ये कितना बड़ा कंप्यूटर है, नारायण का कंप्यूटर है ना। यहां पर कोई चीज एक सर्च में डालो, कहां सर्च कर क्या है, सर्च में कुछ डालोगे चीज। आज मैं खोज रहा था रावण के विषय में, तो रावण ने टाइप किया तो विश्वपति द्विवेद टाइप आ गए खुल करके, और मैं देखा कि एक सोसाइटी भी है जिसका नाम है रावण सोसाइटी। हाँ साउथ इंडियन सोसाइटी है वो, रावण सोसाइटी। अब तो ऐसे विभिन्न नाम आ गए 15 के। यहां पर एक गुण एक व्यक्ति को खोजना है जिसमें इतने गुण आप डालो एक व्यक्ति निकल करके आएगा, कौन व्यक्ति है। ये उस कंप्यूटर में नहीं था, नारद कंप्यूटर में था। नारद जी कहते हैं इक्ष्वाकु वंशम प्रभो इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न। वे कहे आज के इसका मतलब भगवान राम आज भी धराधाम पर थे। ये प्रमाणित करता है कि वाल्मीकि रामायण लिखा गया है जब भगवान राम धराधाम पर अपना लीला विहार कर रहे थे तब। तो कहते हैं कि हे ऋषि इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिनका नाम राम है। जिन जिन गुणों का आपने ग्रहण किया है वे सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण विधान है, वे ही आज समस्त शक्तियों के स्वामी हैं। क्योंकि राम जो है स्वयं भगवान है, तो भगवान से सब शक्तियां निकली हुई हैं, तो उनके गुणों का प्रण करने जो सब शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान राम के वाल्मीकि जी थोड़ा पूछे थे, लेकिन नारद जब वर्णन करना शुरू किए तो भगवान का खूब आंख बनकर खूब वर्णन किए। यह प्रमाण करता है या दिखलाता है कि नारद जी को भगवान के चरणों में कितनी श्रद्धा है। जब प्रेम होता है किसी वस्तु से किसी व्यक्ति से तो उसका वर्णन जो व्यक्ति करना शुरू करता है तो मत करिए कितना वर्णन करेगा, खूब वर्णन करेगा। प्रेम होना चाहिए, नारद जी वर्णन करना शुरू किए। सर्वप्रथम भगवान के श्री अंगों का वर्णन करने लगे, भगवान राम के श्री अंगों का वर्णन किए। जितना बात उन्होंने प्रश्न किया था उन प्रश्नों का उत्तर एक श्लोक में ही दे दिए। मानो कि इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ का प्रतापी पुत्र है जिनका नाम है राम, वे सर्वसंपन्न है, सर्वगुण विधान है और समस्त शक्तियों के स्वामी है। उनकी भुजाएं बड़ी है, कहां तक है घुटना, ये भगवान का पहचान है। आजकल जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूं और भगवान का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पहले ये देखना चाहिए कि उनका जो हाथ है वो घुटना तक है कि नहीं। आप लोग नाप तक ना कहा घुटना तक आएगा, बैठने पर आ सकता है, खड़ा होना टर्न कर रहे हो ना, कहां तक आ रहा है, देखो 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 कल हवा उधर कहा नहीं आएगा, नहीं आएगा। जो भगवान है साल का है। तो भगवान राम का वैसे ही जो भुजाएं वे घुटने तक लंबी थी, उनका ग्रीवा जो था इस शंख के समान बड़ा सुंदर था, शंख के समान था उनका ग्रीवा। उनका कंधा और छाती विशाल था, विशाल का है कंधा, जिसे कंधा बड़ा होता है वो बड़ा हो सकता है, कंधा छोटा हो सकता है। कंधा और छाती भगवान राम का, हम लोगों का छाती बड़ा नहीं तो छाती बड़ा करते हैं, दिखाते हैं कि हमारा छाती बड़ा है, छोटा छाती है दिखाते हैं छाती बड़ा है। भगवान राम दिखाते नहीं, भगवान कृष्ण दिखाते नहीं, हमें छाती बड़ी है ऑटोमेटिकली, गाय गुण है उनकी छाती बड़ी है, उनकी जो कंधा है बड़ा है, उनका ललाट चौड़ा है और बड़े शोभायमान है, हम लोगों का ललाट बहुत छोटा है, कला विशाल है। इसका मतलब ही उनका बाल उड़ गया था, समझ रहे ना, कितना तो बाल यहां तक चला आता है और कितना होगा इतना चौड़ा हो गया और ना कोई बाल से मिल जाते हैं, उनके ललाट का चौड़ा है भगवान राम का। तो नारद जी एक एक अंग का अपनी भांति वर्णन कर रहे हैं, उनका कंधा और छाती विशाल काय है, उनका मस्तक बड़ा चौड़ा है शोभायमान है, उनका आंख जो है विशाल का है, विशाल नेत्र वाले हैं, वो आजकल तो काजल लगाते हैं आंख को बड़ा करने के लिए, देखा स्त्री स्त्रियां कैसे सिंगार है, लेकिन कुछ पुरुष लोग लगाते हैं कल्चे काजल आंख बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन भगवान राम है भगवान राम का कृष्ण का आंख देखो तो बड़ा आंख है। ये सब भक्तों को समझना चाहिए, ये भगवान की पहचान है, जो ये मूढ़ लोग आज अपने को भगवान कह करके लोगों को भ्रमित करते हैं, ये भगवान का मान कम है। कोई कहे कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का मान कम होना चाहिए, कोई कहे इंजीनियर तो इंजीनियर मां हमें पहचान का इंजीनियर है, कोई कहे मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य कुछ मां होना चाहिए, कोई मैं भगवान हूं भगवान का मां होना चाहिए, और इस पर भगवान का मां है इसे पहचानना चाहिए। उनके शरीर की कांति दैवीप्यमान थी, दैवीप्यमान है और थोड़ा थोड़ा हरा हल्का हरा रंग का है, राम जी का शरीर जो है वो हल्का रंग का है। नीलाम श्याम ओम रामम सीता समारोहित वाम भावम पारु महाकाय कारकम नमामि रामम रघुवंश सनातन नीलाम। इस प्रकार से चमकीला उनका शरीर है। जब भगवान चलते हैं तो उनका चाल मनोहर है, मन हरण की मनोहर जो मन को हर राधारानी के समय बताया गया है कि राधा चलती है तो उनका उन्होंने गजगामिनी 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 के समान हाथी के समान का चाल है मस्ती पूर्वक चलते हैं। तो भगवान राम या भगवान कृष्ण जब चलते हैं तो मन को मोहित कर देता है उनका चाल, चाल भगवान राम का चाल होता मनोहर चाल है, भगवान राम का चाल मनोहर है। भगवान कृष्ण जब चलते थे जाते थे गोचारण करने के लिए तो घर से गोपियां बाहर निकल करके अटलताओं से गृहियों से भगवान का चाल देखते हैं, भगवान कैसे चलते हैं जब गोचारण करने जाते हैं। भगवान राम के चाल जब जनकपुर के नरनारे भगवान श्री राम के सौंदर्य का वर्णन किए हैं और उसी में किसी ने भगवान श्री राम के चाल का वर्णन किया है, कैसा उनका चाल है। नारद जी कहते हैं कि बात की भगवान राम का जो चाल है वो कैसा है, मनोहर है, मन को हरने वाला है। चाल के मतलब पैर से चलना, न कि कोई दूसरा चाल और उसका नहीं मन समझना चाहिए, वो भी मन को हरने वाला होता है। चाल चलना वो सिंपल बात है, चाल चलना। उनका शरीर कैसा है, न तो ज्यादा लंबे हैं और न छोटे हैं, मध्यम है और उनका शरीर सुडौल है, अच्छा खटा है, बड़ी बिल्डर जैसा है, पूरा उनका शरीर सुंदर है, सुडौल है शरीर। वे बड़े प्रतापी हैं, उनकी बुद्धि अद्वितीय है, उनकी बुद्धि के समान और किसी का बुद्धि नहीं। वे धैर्यवान हैं, बड़ा से बड़ा विपत्ति आ जाए तो वे धौर धारण करते हैं। धैर्यवान का एक उपमा हम दे सकते हैं, जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का जब बात कहा गया कि उनका कब राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन राज्याभिषेक के बजाय उनको 4 साल का वनवास ला दिया गया ऋषि जी, भगवान राम का धैर्य नहीं खोए, बस लक्ष्मण धैर्य खो दिए और धनुष बाण लेकर तैयार हो गए लड़ाई करने के लिए, लेकिन भगवान राम धैर्य नहीं खोए, धैर्य नहीं खोए। और ये ऐसी कई घटनाएं हैं जब भगवान राम अपना धैर्य नहीं खोए। उनकी वाणी गंभीर और सुमधुर है, भगवान राम की वाणी गंभीर और सुमधुर है। जो व्यक्ति भगवान राम का वाणी सुनता है वह सुनता ही रह जाता है। इस प्रकार से भगवान के शारीरिक कांति का वर्णन किए और उनके बल का वर्णन कर रहे हैं कि वे राम सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में निपुण है और वेद शास्त्र के लिए, ज्ञान के लिए अपरिमित है। समस्त वैदिक वेद पुराण ज्ञान के वे ज्ञाता है, स्वधर्म पालन के वे विशाल है। अपने धर्म के पास हम लोग जानते हैं किस प्रकार से अपने स्वधर्म का, पुत्र धर्म का भी पालन किए, दशरथ जी को वनवास के लिए अनाउंस कर दिए, जब भरत जी गए उनको लाने के लिए तो कहते नहीं तुम्हारा भी धर्म है और मेरा भी धर्म है, दोनों का एक ही धर्म है, हुआ है पिता का आज्ञा पालन करना, मेरे लिए स्वधर्म है 14 साल तक वन में रहना और तुम्हारे लिए स्वधर्म है अयोध्या का राज करना। इस धर्म है भगवान श्री राम सुधर्म पालक के महामिसाल है, उनके समान सुधर्म पालक में कोई नहीं है। भगवान श्री राम वर्णाश्रम धर्म के पालक हैं, उस सबका रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम के राज्य में सब लोग अच्छे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग अच्छे थे भगवान श्री राम के राज्य में, सबका रक्षा होता। वे शरणार्थों के रक्षक हैं और असुरों के काल हैं, जो उनके शरण में चला जाता है उसका भी रक्षा करते हैं, लेकिन असुरों के लिए वे काल होते हैं। शरण में कोई भी जा सकता है। जब भीषण जी आए थे भगवान श्री राम के शरण में, सब लोग मना कर रहे थे, मत रखिए मत रखिए मत रखिए। भगवान ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा कमजोरी यही है कि मेरे शरण में यदि कोई विकास करते हैं, दृढ़ निश्चय प्राप्त होते हैं। ये सीखनी चाहिए। हम जो भजन कर रहे हैं इसमें दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए। जब तक दृढ़ निश्चयता नहीं होगी भजन ठीक से नहीं हो पाएगा। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति वृद्धि में दृढ़ निश्चयता बहुत जरूरी है। उत्साह निश्चय दृढ़ निश्चयता होना बहुत जरूरी है। तो भगवान के नाम दृढ़ निश्चय वे अस्मरण शक्ति से युक्त थे। उनके समान अस्मरणीय कोई बहुत कुछ याद रखते भगवान श्रीराम। वे दयालु हैं, समुद्र के समान गंभीर हैं, समस्त लोगों के प्रिय हैं। वे मित्र और शत्रु में भेद नहीं करते हैं, दोनों को एक समान समझते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन किए तमाम वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कि थोड़ा कृपा करके बतलाइए ये जो ऐसे गुण निधान हैं उन्होंने सबसे क्या किया है, जिनका इतना गुण है उनके संबंध में आप हमें बतलाइए। तो पूरे रामायण का संक्षिप्त में नारद जी वाल्मीकि जी को वर्णन की बतलाए किस प्रकार से जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था वहां से शुरू करते हैं। राज्याभिषेक से राज्याभिषेक होने वाला था, सब प्रकार की तैयारियां हो गई थी। देखिए ये तो नारद जी संक्षिप्त में कहते हैं, आजकल तो बहुत संक्षिप्त में रामायण कर देंगे, 10 मिनट के अंदर पूरा रामायण कर देंगे। एक राजा थे दशरथ जी, उनकी 3 पत्नियां थी, उनके 4 बेटे हुए। विश्वामित्र जी लेकर के गए, तब का स्वभाव मारे, उसके बाद जनकपुर गए, शादी विवाह हुआ, बाद में आए राजा अभिषेक कहा आया, वो मंत्रा जाकर के कह गई कि माँ खराब कर दी, और बाद में कह गई ने राम दशरथ जी से वचन मांगी जो उनके पास रोल के रूप में लगी थी, उसके परिणाम स्वरूप राम को लोकपाल का वरदान और भरत को राज मांगा। दशरथ जी नहीं चाहते हुए भी अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए वे ऐसा किए। भगवान श्री राम अयोध्या को छोड़ करके और सिंगेरपुर गए, निशाद वहां से मिले, उसके बाद गंगा पार कर करके चित्रकूट गए। चित्रकूट में 12 साल तक भगवान श्री राम निवास किए। इधर दशरथ जी इस सिंगेरपुर जो जगह है आज भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, इलाहाबाद के नजदीक में है सिंगेरपुर, वह जगह है, वहीं पर मृगारी जाकर के भजन किए। नारद जी जब उनको उपदेश दिए थे तो मृगारी जाकर के सिंगेरपुर में भजन किए थे। आज भी मृगारी का भजन स्थल ही है सिंगेरपुर, और सिंगेरपुर बहुत सुंदर रमणीय स्थान है गंगा जी के तट पर। चतुर्भुज आप हैं इधर देखे हैं, चलिए इलाहाबाद मंदिर में 80 किलोमीटर होगा। ऋषि सिंह वहीं के थे, उनकी कथा बाद में आई, उनके नाम से सिंगेरपुर पड़ा जगह। और एक उसके बाद गए चित्रकूट में, भगवान के नाम 12 साल तक चित्रकूट में रहे, और वहां पर एक पर्वत है, क्या नाम पर्वत कमलगिरी, जो गिरिराज के समान पर्वत है। आज भी हजारों भक्त लोग कामदगिरी पर्वत का परिक्रमा करते हैं, और हमने देखा कि वहां के मंदिर बड़े अच्छे हैं, वृंदावन जैसे मंदिर है, कुंभार मंदिर नहीं है। वो आप कोई भी सामान लेकर के जाओ कुछ नहीं करेंगे, वो अच्छी नहीं देंगे, सुशील बंदर है, क्योंकि भगवान राम भी बंदर है, कृष्ण नखर से राम के बंदर, राम मर्यादा तो स्वतम है, उनके बंदर भी मर्यादा बंदर है, मर्यादा में रखते हैं, मर्यादा तोड़ते नहीं, लेकिन फिर भी लोग ले जाकर सामान देते हैं। एनीवे, भगवान श्री राम जब किस प्रकार से चित्रकूट में गए, चित्रकूट गए, चित्रकूट से पहले भगवान के आश्रम गए, वहां उसमें बिताए, उसके बाद वे चित्रकूट गए। चित्रकूट में भगवान 12 साल निवास किए हैं लक्ष्मण और सीता जी के साथ में। इधर दशरथ जी भगवान श्री राम के विरह में हाराम कहते हुए अपने शरीर को त्याग दिए। दशरथ जी के मरणोपरांत उनके मंत्री सुमंत जी बलभद्र जो अपना निहाल गए थे उन लोगों को वहां से बुलाया गया। कैसे ही ऑस्ट्रेलिया के नहीं कहीं कोई मामा रवानी सुना है कहते थे एनीवे कोई बोलता है ऑस्ट्रेलिया तमाम बोलते हैं कश्मीर में कहीं ऑस्ट्रेलिया में कश्मीर में अजय तो उस समय भरत जी और शत्रुघ्न के गए थे अपने ननिहाल। बड़ा अच्छा जोड़ी था राम लक्ष्मण का जोड़ी और भरत और शत्रुघ्न का जोड़ी। भरत जी को बुलाया गया, भरत जी आए, जब सब कुछ मालूम हुआ विश्व के इतिहास में भरत के समान कोई आज तक भाई नहीं हुआ है। जब यह बात पता चला भरत जी को तो मानो के प्राण और केड़ू निकल गए, क्योंकि भगवान के नाम भरत जी के प्राण, भगवान सबके प्राण है, राम सबके प्राण है, लेकिन भरत का तो कहना ही क्या है। भरत बावले हो गए, पिताजी का अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद सुमंत आदि मंत्रियों को लेकर के वशिष्ठ आदि गुरुओं और याचकों और ऋषियों को लेकर के भरत जी प्रस्थान किए चित्रकूट की तरफ। जब वे चित्रकूट पहुंचे राम भरत मिला बहुत ही हृदय विचार प्रसन्न है, किस प्रकार से दोनों भाइयों में कुछ वार्ता हुई। तदुपरांत ये भगवान श्री राम भरत जी को संतावना दिए और कहे कि नहीं नहीं आप ही पिताजी का आज्ञा पालन करो, मैं ही पिताजी का आज्ञा पालन करता हूं। किस प्रकार से भगवान का चरण पादों का लेकर के भरत जी वहां से आए। रामो भी शुभ जंगल में बिना पादुका के चले, अरे पादुका का वही मैं ले लिया, इतना मैं स्वार्थी हूं। भरतमुख भी नहीं सकते थे। वे अयोध्या न जाकर के अयोध्या के दूर नंदीग्राम में एक पर्वकुटी बनवा करके और वहीं पर एक राजा पर्वकुटी में निवास कर रहा है। इस शिक्षा का बात है कि कैसे भगवान के प्रति हम लोगों की भक्ति होनी चाहिए, भरत जी से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान जंगल में खुले पैर भटक रहे हैं तो भरत जी से मैं क्यों राज्य भोग करूं या भोग खाऊं, तो भरत जी नंदी ग्राम में निवास करने लगे। भरत जी वहां पर नंदी ग्राम में हैं। भगवान श्री राम का जब पता चल गया कि राम वहां पर है चित्रकूट में, तो अयोध्या से कोई दूर चित्रकूट ना के बजाय 2 किलोमीटर होगा तो बहुत लोग जाना दावा लग गया जाने का। तो भगवान राम से देखिए ये दूषित काल नहीं लग रहा, आप नहीं लग गया। तब भगवान राम वहां से चल दिए और आते आते बीच में विभिन्न प्रकार के ऋषि महर्षियों से अगस्त जी, उनके भाई अगस्त जी इत्यादि उनसे मिलते हुए शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। अगस्त जी से दिव्य अस्त्रों का दिव्य अस्त्र ग्रहण किए। इस प्रकार से विधान लगा रहे हैं। किसका मन विधान है? दंडकारण्य है। दंडकारण्य में भगवान श्री राम परमपुरी बना करके ये सब नारद जी संक्षिप्त में कथाएं बता रहे हैं, परमपुरी बना करके और वहीं पर रहने लगे। असुरों का अगर राज्य था, सब ऋषि मिल करके भगवान श्री राम से प्रार्थना की थी। जनकारा में प्रवेश कर रहे थे भगवान श्री राम उस समय, सब मिलकर प्रार्थना किए थे कि हे प्रभु आप हम लोगों को इन असुरों से मुक्ति दिलाइए। भगवान श्री राम वचन दे दिए थे ऋषियों को और अग्नि देव से प्रार्थना किए कि मैं असुरों को वध करने जा रहा हूं, इसलिए आप सीता जी का देखभाल करना। और छाया सीता प्राप्त कर करके उस छाया सीता के साथ में दंडकारण्य में वे निवास कर रहे थे। एक दिन की बात है, रावण की बहन शूर्पणखा आई और वह जब राम को देखी तो मोहित हो गई और अंत लक्ष्मण जी को उसका नाक काटना पड़ा। नाक काट ले लक्ष्मण जी शूर्पणखा गई, राम की बहन थी। वहां जाकर के शूर्पणखा अपने भाई की सब बात बताई तो बड़े वीर सेना लोग आए, बहुत लड़ाई हुआ और बहुत लोग मारे गए। राम के प्रताप को राम समझ रहा था तो सोचा, बल्कि सुप्रधान उपाय भी बताया था कि यदि उसको मारना है तो उसका जो दिल है वह लगा है उसके पत्नी, यदि किसी प्रकार से उसके पत्नी को उससे आप दिया अलग कर दोगे तो अपने आप 50% मर जाएगा, फिर तो उसको मारना बड़ा आसान होगा। तो इस प्रकार से कुमतिपूर्ण बुद्धि शूर्पणखा ने रावण को दिया। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि रावण और कुंभकर्ण का जो अवतार था वो काम का अवतार था, तो कामातु रावण तक्षण प्लान बनाना शुरू किया और प्लान के बीच में मारिच मामा को जगाया। मारिच जी भगवान राम के बाण का मजा चख लिए थे, तो पहले तो बहुत राम को मारने का प्रयास किए कि जब राम ने नहीं माना तो मारिच ने कहा कि राम के हाथ से मरने के बजाय राम के हाथ मरना अच्छा होगा। तब राम के आदेशानुसार मारिच सोने का हरिण बन करके आए। सीता जी जब सोने का हरिण देखी तो मुक्त हो गई और उस सेवन के हरिण को प्राप्त करना चाहती थी। भगवान राम विभिन्न प्रकार का स्वर्ग कि पापा से मैंने कभी सोने के हरण का न देखा है न सुना है, ये कुछ हो सकता है, ये अपूर्व की माया होगी। लेकिन बस सीता जी का मैं एक चीज आपसे मांग रहे हूं, मतलब फिर कुछ भी नहीं मांगी, एक चीज मांग रहे आप ये भी नहीं कर सकते हैं। तो राम हम सब गए माली को मारने के लिए और आप जानते हैं बाद में क्या हुआ। हम सब राम और सीता जी का चोरी किया, जटायु और रावण से युद्ध हुआ। जब राम और रावण आए सीता जी को वहां न प्राप्त किए तो ढूंढ रहे थे, वन में वृक्षों से पूछ रहे थे, लता पवाओं से पूछ रहे थे कि आपने सीता जी को देखा है, जन्म मंदिर में देखा है। इस प्रकार से पूछते हुए जा रहे थे तो जगाई जी को देखे, जगाई जी पूरा बाप बताए और जटायु ने बताया कि आप जाइए और शिवली के पास जाइए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान श्री राम वहां से आगे बढ़े तो उन्हें एक असुर मिला। क्या नाम था उसका? पेट में कवल कवल नाम का असुर मिला, उसका भी उद्धार किए भगवान श्री राम और लक्ष्मण। वहां पर कवल पहले एक देवता था लेकिन श्राप और असुर बन चुका था, उसका उद्धार हुआ। और उसका शरीर जलाया जा रहा था तो उसने भी वही बात बताया, जटायु बताया कि आप जाइए और शिवलिंग से मिलिए और वह आपके पत्नी का पता बताएगी। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम शिवलिंग के आश्रम में गए, कवन का मूर्ति कर करके शिवलिंग के आश्रम में गए। शिवलिंग भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी, वह अपने गुरु के आदेशानुसार वहां पर निवास कर रही थी और भगवान राम का प्रतीक्षा कर रही थी कि राम कब आएंगे। अपना पूरा जीवन शिवलिंग निकाल दिया भगवान राम के प्रतीक्षा में कि भगवान कब आएंगे। जब भगवान श्री राम वहां पर आए तो राम का सेवा सत्कार कर रही थी। अब जानते हैं शिवली भिलनी थी बेचारी लेकिन भगवान का भजन कर रही थी। तो भगवान का भजन कोई कर सकता है, भगवान के भजन पर सबका
कि आप लोग कौन हैं, आप लोग इधर क्या कर रहे हैं।
पहले अपना पता नहीं पता है, पहले उन का पता पूछेंगे। जब पूरा मालूम हो गया कि क्षत्रिय कुमार हैं, अपने पत्नी के विरह में जब ढूंढ रहे हैं और महाराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं, तब हनुमान जी अपने रूप में आ गए और कहे कि मैं कौन पुत्र हनुमान हूं, मैं महाराज सुग्रीव का मंत्री हूं और महाराज सुग्रीव ने ही हमको भेजा है आप लोगों को टकराने के लिए। तब पहाड़ और चढ़ाई बहुत ऊंची थी, भगवान राम और लक्ष्मण सुग्रीव को छिड़क कैसे पाएंगे, हनुमान जी का निर्णय कीजिए आप लोग हमारे हाथ पर आ जाए। तब भगवान राम तो जा रहे थे, लक्ष्मण जी हाथ खींच रहे कि भैया मत जाइए मत जाइए, ये लगता है कि मायावियों का कोई माया है। कैसे प्रत्येक नहीं रहे पहले पंडित जी बने थे अभी वो बन गए, और न जान न पहचान समय में बैठने जा रहे तो नहीं कहा तो लेकर चला जाएगा। भगवान राम ने कहा देखो दो कारण है जिससे मैं विश्वास पर कर रहा हूं। पहला कारण है कि माता शेवरी ने कहा था कि सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी हैं, वे आप लोगों को मिलेंगे और आपको सुग्रीव तक ले जाएंगे। दूसरा बात, जब ये आप आए थे जो परिचय दिए थे तो ब्राह्मण के रूप में थे, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता है, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता है। तो दो कारण है विश्वास करने का। तब ब्राह्मण के साथ लक्ष्मण चढ़े, इस प्रकार सुग्रीव से दोस्ती हुई, बागी मारे गए, सुग्रीव का अजय अभिषेक हुआ। कुछ समय के बाद चतुर्मास के बाद सब बंदर निकले पता लगाने के लिए, संपादी जी मिले और संपादी जी बताए राम का पता, राम का पता है, और जामवंत जी बताए हनुमान जी के शक्ति का स्मरण कराए और हनुमान जी लंका गए, जाकर के विभीषण से मिले, अशोक बाटा का पता लगाए, माता पिता का दर्शन किए, माता पिता को भगवान राम का संदेश बतलाए, फिर ब्रह्मा जी के ब्रह्म पास में आया कि वे बांधे गए, तब वे लंका को जला करके आकर के भगवान श्री राम से माता सीता का समाचार बतलाए, फिर भगवान श्री राम समस्त बंदर सेनाओं को लेकर के और वे समुद्र तट पर गए जहां पर वे अपने बाण से समुद्र को प्रचलित कर दिए और बाद में समुद्र पर पुल बांधा गया। भगवान राम गए लंका में, रावण को मारे, सीता जी को के साथ में पुष्पक विमान से आए, आते समय भरद्वाज मुनि को और गुहा जाकर गुहा को लेकर के भरद्वाज आश्रम पर आए और हनुमान जी को एडवांस पार्टी बना करके नंदीग्राम में, हनुमान जी एडवांस पार्टी बनकर नंदीग्राम आए, बाद में भगवान श्री राम नंदीग्राम आए और अपने जटाजूट बाल को कटा करके उसके बाद उनका राज्य अभिषेक हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री राम राजा बने और भगवान श्री राम के राज्य का क्रम नारद जी पर किए हैं कि भगवान श्री राम का जो राज्य था, राम के राज्य में सब लोग प्रसन्न थे, सब लोग सुखी थे, सब लोग संतुष्ट थे, हृष्ट पुष्ट थे, कोई व्यक्ति रोगी नहीं था, रोग से सब मुक्त थे, कभी अकाल नहीं पड़ता था, कोई भी बेटा अपने बाप के जीवित रहते नहीं बनता था, कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती थी भगवान राम के राज्य में, सब स्त्रियां पतिव्रता होती थी, राम के राज्य में आग लगने का कहीं भय नहीं था, न तो किसी प्राणी को जल में डूबने का भय था, न तो किसी प्रकार का ज्वर और रोग होता था। क्यों लोग राम के राज्य में नहीं थे, फल थे, गौ के असर में दूध थे। इस प्रकार से भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक इस धराधाम पर राज्य किए। इसीलिए लोग राम राज चाहते हैं, राम तो नहीं चाहते हैं, राम राज चाहते हैं। इस प्रकार से संक्षिप्त में नारद जी भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का कथा बताए, शुरू से लेकर के अंत तक। पहले संचालन हुआ लेकिन हो नहीं पाया, बाद में हो गया। और नारद जी का सम्मान किए, वाल्मीकि जी सर्वप्रथम नारद जी वाल्मीकि जी के आश्रम से चले गए। अपने शिष्य भरद्वाज के साथ में वाल्मीकि मुनि तपसा नदी के किनारे स्नान करने के लिए संध्या का समय था, लगभग दोपहर का संध्या। जब वे स्नान करने गए, स्नान कर करके ज्ञान वर्ष होने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुला और एक बहुली दोनों का आश्रम थे और मिलन के लिए नजदीक आ रहे थे। तब तक से एक बहेलिया एक बाण से बगुली का पद कर दिया। बेचारी जो बगुली पकाने लगी अपने पति के मृत्यु से, वाल्मीकि जी सब देख रहे थे और वाल्मीकि जी से रहा नहीं गया। वाल्मीकि जी एक श्राप थे, कर्मांता को प्रतिष्ठा तम गवा प्रतिष्ठा यह कौशम मिथुना एव यह कौशम मिथुना एकम बदती कामोहितम। ऐ कामातुर कौन था बहुला था, वैसे प्रति उसने मार करके जिसे शांति को भंग किया, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। जब बल्कि श्राप देती बहुला को, सॉरी उस श्राप को बहेलिए को, तो उनका मन बड़ा क्षीण हो गया कि उस श्राप देने से उसका सब का विभव का वो क्षय हो गया। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, किसी का निंदा करने से, गाली देने से, व्यर्थ का पाप करने से हमारी भक्ति क्षय होती है। वाल्मीकि जी का सब क्षय हो गया और वे बड़े दुखित हो गए, पीड़ित हो गए कि हाय हाय मुझसे ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों किया। लेकिन उसी समय जो श्राप दिए थे वह एक अक्षरों के रूप में आया, जो 8 अक्षरों में बंधा हुआ था। जो संस्कृत के श्लोक होते हैं उसको तोड़ना होगा तो 8 अक्षर होते हैं, 8, 8, 16, 32 अक्षर का एक श्लोक होता है, 8 अक्षर होते हैं। तो बड़ा सुंदर पद हुआ। नारद जी आदेश दिए थे वाल्मीकि जी को किसका विकास रचना कीजिए, उस पुरुष का जिसके विषय आपने पूछा उसके जीवनी का बायोग्राफी आप लिखिए। तो वाल्मीकि सोच रहे थे मैं गद में हूं कि पद में हूं। तब तक से उनके मुंह से जो श्लोक निकल गया वह बस उतर मिल गया, वो काव्य के रूप में पद के रूप में उसे लिखना वो निर्णय कर गए थे। इस प्रकार से स्नान कर करने पर आश्रम आए, लेकिन उनका मन बड़ा खिन्न था। सब शिष्य लोग आ गए थे चारों तरफ, लेकिन श्री वाल्मीकि जी बड़े सुखी थे। उसी समय ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर के ब्रह्मा जी वाल्मीकि के आश्रम आए। वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के साथ में खड़ा होकर के ब्रह्मा जी का आह्वान किए, उनका सत्कार किए। तदुपरांत ब्रह्मा जी देखे वाल्मीकि जी का मुखारविंद कि वो कैसे खिन्न हो गए हैं, तो पूछे उनके खिन्नता का कारण क्या बात है, आप क्यों दुखी हैं। तो वाल्मीकि जी पूरा बात बताए कि उनके दुख का कारण क्या है। तो ब्रह्मा जी हंस पड़े और ब्रह्मा जी हंस कर कहते हैं कि हे वाल्मीकि, यह सब काम मैंने किया है, ये जो आपके मुंह से जो वाणी आई वो मेरे सोचे, मैं ही बोला होता है, इसमें आपका कुछ भी दोष नहीं है, सब मैंने कराया। क्योंकि मैं चाहता था कि आप इस काव्य का रचना करें जिसका संक्षिप्त वर्णन आपको नाराजगी कर सके। इसके रचना के लिए मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, जिस दिव्य दृष्टि के चलते आप भगवान श्री राम के समस्त लीलाओं को समझ सकते हैं। क्योंकि नारद जी केवल शुद्ध रूप में बताए थे, संक्षिप्त में बताए थे, बाद में ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। ये लोग सक्षम है ये दिव्य दृष्टि देने में। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो चुकी थी उस समय अंतिम बार व्यास देव आए थे धृतराष्ट्र को बुद्धि देने के लिए, और धृतराष्ट्र कहते हैं पुत्र तुम्हें मालूम नहीं है कि इस युद्ध में क्या होगा। अरे वैसी घटना घटेगी जो कभी समझ सोच भी नहीं सकते। वाल्मीकि जी बहुत मनाए करे व्यास मनाए करे धृतराष्ट्र को मान लिया, तो फिक्स हो गए कि लड़ाई होना ही है। व्यास ने धृतराष्ट्र से कहा कि ठीक है तो तुम्हारी यही इच्छा है तो कहो तो मैं तुमको आंख दे देता हूं, तुम्हें वह दृष्टि दे दूंगा कि तुम यहां बैठे बैठे पूरा देख सकते हो कि लड़ाई कैसे हो रही, कौन मार रहा है, कौन मर रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा कि वो आंख आप आज दे ही देंगे, अरे देना ही ना तो पहले दे होगा अच्छा होगा, और देकर क्या करेंगे। अरे मैं कभी देखा नहीं दुर्योधन कैसा लगता है देखने में और युधिष्ठिर कैसे रहते हैं देखने में, मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा कि मेरे 100 बेटे मैं इतना जानता हूं लेकिन मैं पहचान नहीं कर पाऊं मेरा बेटा है, लेकिन फिर भी ये जानने की मेरी इच्छा है कि वहां पर क्या हो रहा है। तो हे व्यासदेव आप कृपा करके यह दिव्य दृष्टि हमारे सेक्रेटरी जो है संजय संजय को दे दीजिए। तो व्यासदेव वो दिव्य दृष्टि संजय को दे दिए थे, इसीलिए जितना पूछते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संविधान माम का पांडव किम अवृत संजय संजय भाई तो देखो थोड़ा देखकर बताओ कि धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में हमारे बेटे और पांडवों के बेटे ने क्या किया, बताओ देखकर। तो मैं जिस दृष्टि का बात कर रहा था वैसे ही ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को दिव्य दृष्टि दिए, उस दिव्य दृष्टि से वाल्मीकि जी समस्त लीलाओं को देख सकते थे। जो लीलाएं भगवान श्री राम और सीता के बीच में हुई थी वो भी देख सकते थे उस दृष्टि से। इसीलिए वाल्मीकि जी जब रामायण का पूरा रचना किए नारद जी से सूत्र के रूप में प्राप्त किए और ब्रह्मा जी से दिव्य दृष्टि प्राप्त किए, तदुपरांत उन्होंने रामायण का रचना किया। देखिए दोनों ने कहा उनको रामस्य चरितम् कुतस्नम् कुरुतम् ऋषभतमः धर्मात्मम् भगवतो लोके रामस्य धीमतः वितर्कम् निरस्यता ते नारदम् तच्छ्रुतम्। कहते हैं कि हे मुनिसप्तम ऋषभतमः हे ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हे वाल्मीकि जी रामस्य चरितम् कृतस्नम् कुरु आप कृपा करके राम के चरित्रों का रचना कीजिए। तो ऋषभतमः क्योंकि आप ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, धर्मात्मो भगवतो लोके रामस्य धीमतः भगवान श्री राम इस संसार में धैर्यवान और धर्मात्म पुरुष हैं, उनके ही जीवनी को आप लिखे यथा से नारद शुभ जैसा कि आपने नारद से सुना है। देखिए ब्रह्मा जी भगवान राम के लीलाओं के विषय में कुछ नहीं बताए, भी बदल से लिए बात राम के लीलाओं का वर्णन नारद ने किया। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं यथा इस प्रकार से ते आपने नारद श्रोतम जैसा आपने नारद से सुना है वैसा ही ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से वाल्मीकि जी रामायण काव्य का रचना करना प्रारंभ किए। 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि जी रामायण काव्य का रचना किए। जब वाल्मीकि जी रामायण काव्य का रचना कर रहे थे देखिए कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ वहां पर कथा नारद बदला और जब रचना करने लगे तो उस समय से लेकर के सीता जी को भगवान बांधे हिंदी में लोग उसका जन्म हो गया तब अब रचना समाप्त हुई लोग बड़े भी हो गए थे। तो इस प्रकार से जब रामायण काव्य की रचना वाल्मीकि जी कर लिए तो उनके मन में चिंता हुई कि लोक कल्याण के लिए लक्ष्य लोक कल्याण साधु महात्मा जो है उनका लक्ष्य होता है लोक कल्याण। तो वाल्मीकि जी भी रामायण का रचना किए थे लोक कल्याण के लिए। तो लोक कल्याण कैसे होगा इसका प्रचार होना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रभुपाद जी लोक कल्याण के लिए काम में एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी आचार गण है लोक कल्याण के लिए। तो पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था पहले पेपर नहीं थे ऐसे हम तो किताब बन गया पहले किताब नहीं था। तो पहले इन शास्त्रों को श्रुति कहता था श्रुति स्मृति गुरु से शिष्य सुनते थे उसको याद करते थे और बाद में सुनाते थे। तो वाल्मीकि जी ऐसा ही सोच रहे थे कि इसका प्रचार कैसे हो लोग करने आएंगे ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। उसी समय लौ और कुश आए सुबह का समय था संध्या वंदन करने के बाद सुबह के संध्या कैसे जारी करने के बाद हमारे वाल्मीकि जी सप्ताह के किनारे अपने आश्रम में बैठे हुए थे। लौ कुश आए गुरुदेव को प्रणाम किए ग्रह स्पर्श किए और चरण स्पर्श करते ही वाल्मीकि जी के शरीर में एक शक्ति का संचार हुआ और जो वाल्मीकि के पास जो प्रश्न था किसका प्रचार कौन करेगा तुरंत उनको उत्तर मिल गया क्योंकि लौकुश से अच्छा कौन हो सकता है जो प्रचार कर सके। लौकुश भगवान श्री राम के बेटे हैं तो स्वाभाविक है कि वे लोग अच्छी तरह से इसका वर्णन कर सकते हैं उनसे अच्छा कोई वर्णन नहीं कर सकता है ज्ञान में अनजान में कहते भी। जब व्यास देव भी भागवत महापुराण का रचना किए तो भगवान से यही प्रार्थना किए थे मुझे एक ऐसा पुत्र हो जो कि भागवत का प्रचार कर सके। तब उनकी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप सुखदेव गोस्वामी आए थे और सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही जंगल में चले गए। अब व्यास देव को परेशान कर रहे तेरे बाप रे मैं भगवान से प्रार्थना किया कैसे बेटे के लिए जो इसका प्रचार करे और अभी जी का मां भी बन गया जंगल में चले गए। तो व्यास देव ने कहा कि जो मेरी रचना है यह कोई समान रचना नहीं है यदि भगवान इस पुत्र को दिए हैं प्रचार करने के लिए तो जरूर प्रचार होगा। और व्यास देव अपने शिष्यों को भेजे भागवतम से दो श्लोक दिए बस 18,000 श्लोक है उसमें दो श्लोक दिए और एक व्यास देव के शिष्य हैं इन दो श्लोकों का जा करके दान कर रहे थे। वह दो श्लोक था यह एक श्लोक था जिसमें भगवान के कृपा का वर्णन किया गया लेकिन धात्री का उदाहरण कर रहे थे, धाय मां का उदाहरण कर रहे थे, उसको भी भगवान ने धात्री का पद दे दिया। यशोदा मैया का पद दे दिया, तो कौवा दयालु शरण भजे मां, उन भगवान से और कौन दयालु हो सकता है जिनके शरण में हम जाए। एक यह श्लोक था भगवान की दया का वर्णन किया गया, जो पीस देने गया था उसको भगवान यशोदा मैया का पद दे दिए, तो उनसे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। और दूसरा श्लोक का कौन समझे बड़ा आपकी जनकरण को करण करने का भगवान के सौंदर्य का वर्णन था। भगवान जब गोचारण कर करके आ रहे थे तो बड़ा पीड़ा नगर बहु भगवान गोर गुर धारण किए हुए हैं, नगर बहु है भगवान रघुरामेरु अपने हाथों में अपने अवरों से अपने मुरली को लगाए हैं, आंसरे को लगाए हैं और उसके छेदों पर अपने अंगुलियों से ताल छेदते काम छेड़ते हुए विभिन्न प्रकार का नृत्य गृत करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान के सुंदर सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और दो अश्लोक सुन करके सुखदेव गोस्वामी बेहद हो गए कि कौन को किसने रचना किया है। तो उन्होंने कहा था हमारे गुरु जी ने, गुरु जी का नाम क्या है, व्यास है, समझदार जी है। तब आए सुखदेव गोस्वामी और व्यास जी से पूरा भागवत कथा सुने और बाद में जाकर के परीक्षित महाराज को उसका उपदेश दिए। तो दो श्लोक सुखदेव गोस्वामी के जीवन को बदल दिया था। उसी प्रकार से लोग मिले कि प्रचार करना था, तो उन्हें पहला प्रचार करना था भगवान राम के लीलाओं का। और वाल्मीकि जी बतलाए थे कि जाओ तुम लोग प्रचार करो, और जब तुम लोग अयोध्या जाना तो वहां पर क्या प्रचार करना वो बतलाए थे। और बतलाए थे अयोध्या अगर ये नहीं चीज का प्रचार करना, सीता के दुख का तुम लोग वर्णन करना और कुछ मत करना। तो लोग उस बिट्ठू से निकले, कानपुर से निकले अयोध्या, कितना दूर है, 100-150 किलोमीटर ओके, बिट्ठू इधर है, अयोध्या इधर है, बनारस इधर है, 100-150 किलोमीटर। प्रचार करते करते आ रहे थे। अयोध्या जब आए तो अयोध्या वासियों को टोंट मार मार कर करके वह कथा सुनाने लगे सीता जी के विषय में कि सीता जी का जीवन कैसा था और किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही थी। और लोग उसके द्वारा जब यह बात जब कहलाया जा रहा था तो सब नगरवासी यह सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। किस प्रकार से भगवान राम भी सुन लिए, तो भगवान राम बुलाए लव कुश को अपने राज दरबार में। वे सब लोग दुखी थे, लेकिन जब राम कथा राम दरबार में लोग राम कथा पूरा सुनाए पूरा राम कथा सुनाए तो सब लोगों का दुख दूर हो गया। संसार में कृष्ण कथा राम कथा यदि सुनाई जाए तो सबकी व्यथा दूर हो जाएगी। यदि व्यथा है तो इसलिए है कि हम लोग राम कथा या कृष्ण कथा सुन नहीं पाते, प्राण सोचते। यदि राम कथा और कृष्ण कथा सुने तो जिस प्रकार से भगवान राम की व्यथा दूर हो गई और वासियों की व्यथा दूर हो गई, उसी प्रकार से सबकी व्यथा दूर हो सकती है। बाद में वाल्मीकि जी इस बात को वही छोड़ करके अब साकेत नगरी और का प्रबंध किए कि किस प्रकार की अयोध्या है, अयोध्या का सुंदर वर्णन किए, महाराज दशरथ के राज्य का वर्णन किए, वहां के मंत्रियों और सैनिक गुरु ऋषि लोग थे उन सब लोगों का विवरण किए। इस वर्णन किए लेकिन बाल्मीकि जी कह रहे हैं कि महाराज दशरथ के राज्य में सब कुछ था, सब चहुओं से उनका राज सुरक्षित था, उनके राज्य में जो गलियां थी, जो हाईवे थे, सेंटेड हाईवे थे, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे दोनों तरफ, विभिन्न राज्यों से राजा व्यापारी लोग आते थे अपना कर चुकाने के लिए, महाराज दशरथ का दर्शन करने के लिए। वहां के घोड़ों का वर्णन किया गया है, हाथियों का वर्णन किया गया है, अट्टालिकाओं का वर्णन किया गया है, इस प्रकार के हीरे ज्वाहरात से जड़े हुए अट्टालिकाएं थी। महाराज दशरथ के राज्य में सब प्रजा सुखी थे, सब लोग सुखी थे, लेकिन महाराज दशरथ ही जो थे वे बड़े दुखी थे। तो महाराज दशरथ एक बार निर्णय किए कि हमें कुछ करना चाहिए। उनके सुख का कारण था कि उन्हें कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो कुछ करना चाहते थे। तो एक दिन गुरु वशिष्ठ विद्यालय को बुलाए और बुलाने के बाद गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूंगा। जब वशिष्ठ इत्यादि वामदेव जी जब सुने महाराज के संकल्प को, तो उनके संकल्प को बड़ा सराहा। किसी भी रूप से कोई भगवान का भजन करता है तो सराहनीय है। अकाम सर्वनाम वा मोक्षाम उदारति तिप्रेण भक्ति योगे नवेद पुरुषा परम। कोई किसी भाव में अकाम हो, बिना कामना के, या सर्व काम हुआ या सब काम, अकाम सर्वनाम हुआ मोक्षाम उदारति, चाहे मुक्ति की ही कामना क्यों न हो, मोक्षाम उदारति यही सब पुरुषा परम। जो परम पुरुष का भजन करता है किसी भी कामना से उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो भी चाहे जैसी कामना, तकलीफ है कि हम लोग उन परम पुरुष का भजन नहीं करते। कामनाएं बहुत है लेकिन भजन नहीं करते। यदि भजन करें कामनाओं के साथ में, हालांकि जो कामनाओं के साथ भजन करता है ठीक है, वह व्यक्ति चित्रविदा जनतेमा शुक्र था, वो शुक्र व्यक्ति है, पैक व्यक्ति है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि भौतिक जो कामनाएं हैं, भौतिक कामनाएं जो है वो सदमूल है। यहां तक कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी हो जाए वो अभी सदमूल है। भगवान के अलावा और कोई वस्तु मांगना ये बुद्धिमान नहीं है। एक कहानी याद आ रही है कि एक बार एक स्त्री थी, वो जंगल से लकड़ी काट कर लाती थी और अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन थोड़ा देर हो गया, उसको बहुत सूखा लकड़ी मिल गया तो थोड़ा लालच से बढ़ गया, तो लकड़ी को बांध ली और लकड़ी लेकर के आ गई थी। शाम का समय था, बहुत अंधेरा पड़ा हो गया, उसे ठोकर लग गया और उसका लकड़ी गिर गया। और कोई था नहीं था, लोग चले गए थे, तो बेचारी बड़ी दुखी थी। उसने सुना था कि जब यदि कोई किसी का सहारा नहीं होता है तो भगवान सबके सहारा होते हैं। तो बड़े प्रीति भाव से उसने भगवान को पुकारा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान आ गए और कहे कि माता बताओ, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं? बड़ा प्यार से आपने हमको बुलाया है, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं? तो बढ़िया करती है कि भगवान आप बड़े दयालु प्राप्त किया, आप बड़े दयालु हैं, आप कितने दयालु हैं, आप महान हैं। जैसा मैंने सुना था ठीक वैसा ही हुआ, भगवान आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। उठा करके मेरे सिर पर रख दीजिए।
क्या बुद्धि है,
वो बोझ गिर गया है, भगवान की कृपा से है और संसार का बोझ गिर गया है। और हम भगवान के पास जाते हैं, धन संपत्ति घर आए जय जगदीश नरे, फिर बोझ बढ़ता है। यही कहते हैं ना, भगवान के पास जाकर ये नहीं करना चाहिए। अरे बुढ़िया तो ऐसा भगवान चाहे उसको लकड़ी बहन दिए होते, अरे और तो मुक्ति दे दिए होते, लेकिन क्या उसने माना। इसे कहते हैं कुंज स्नान, हाथी का स्नान। हाथी आता है पानी में, खूब स्नान करता है, खूब स्नान करता है और बाहर आने का करता है, फिर धूल डालना शुरू करता है। तो स्नान क्या करता है, ठीक वैसे हैं भगवान कुछ भी दे सकते हैं। ध्रुव महाराज जब भजन किए, उनकी कामना थी उन्हें एक ऐसा राज मिले जो उनके दादा के राज से बड़ा हो, लेकिन भजन किए, भजन करते कर शुद्ध हो गए थे। और जब भगवान आए तो उन्हें क्लानी हो रही थी कि हाय हाय, मैं क्यों ऐसा वस्तु मांगा जो टूटे हुए कांच के समान है, संसारिक वस्तु में टूटे हुए कांच के समान है। इच्छा मंदूर है, छीणे पूरे सर्वलोकम विसंति एवं त्रैधर्मं प्रपन्ना गता कामते। संसार की इच्छाएं कभी कभी नहीं हो सकती है, इसलिए बुद्धिमान वही है जो भगवान का भजन करे तो भगवान को मांगे और कोई अन्य वस्तु न मांगे। तो किसी प्रकार से भजन कोई करे, दशरथ जी यज्ञ करना चाहे अश्वमेध यज्ञ, उस समय यज्ञ जो धर्म था, कृते अध्याय को विष्णु त्रेतायाम यदाम कई बार कई परिचर्याया परोपकार चिंतनम, सत्यु में जो तपस्या करते भगवान को पसंद करते थे, त्रेता में लोग यज्ञ करते थे, द्वापर में घर घर में भगवान की पूजा होती थी, करो सद हर चिंतनम, और कलयुग में नाम संकीर्तन है। तो यज्ञ था उत्तरता के लिए, इसलिए वे यज्ञ करना चाहते थे। और यज्ञ जो होता है वासुदेव बना महा वासुदेव को प्रसन्न करने यज्ञ थे। तो किसी प्रकार से भगवान को यदि कोई प्रसन्न करता है तो अच्छा ही कार्य किसी भी रूप से। दशरथ जी तो यज्ञ कर रहे थे भगवान की प्राप्ति के लिए, तो कहना ही क्या है। तो किसी जो भजन करें तो भजन एक काम के लिए करनी चाहिए, वह काम है भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान दुख और भविष्य भगवान तीनों जानते हैं, हम लोग सिर्फ वर्तमान जानते हैं, भविष्य को देखे नहीं है, भूत को भूल चुके हैं। इसलिए बुद्धिमान होना चाहिए कि हम भगवान को मान लें, भगवान सब कुछ जानते हैं और समय के अनुसार सब भगवान देंगे। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करेंगे। कल की जो कथा होगी दशरथ जी का पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषिश्रेष्ठ को बुलाना, यज्ञ कराना, पुत्र की प्राप्ति यज्ञ कराना और अश्रु रावण इत्यादि का जन्म, रावण इत्यादि का अत्याचार और देवताओं को भगवान के पास जाना और भगवान का आदेश, यहां पर कल होगा और परसों जो होगा भगवान राम का जन्म का कथा। धन्यवाद, हरे कृष्ण। कृतज्ञ माइक तो भाई माइक पर कहाँ गया, ये नहीं चल रहा है, कहाँ चल रहा है, 5 मिनट और बैठ जाइए, खत्म हो चुका है। बहुत परिश्रम से तपस्या कर रही, 5 मिनट और तपस्या कर रही। इस माइक पर कटाव पे करना, डेली परेशान हो जाए, गेट न्यू एवरी डे। हरे
जल्दी आइए, समय से पहले आइए। देखा कि सफा जनवरी के बाद आप लोग बना रहे हैं, तुम्हारे मिलता है।